Vatsam Braspatim Kritva,
Vatsam Braspatim Kritva,
काला कौन सा पुरुष निकला वास्तव में राजा देव के किए गए समस्त पापों का वो प्रतिनिधि था। हाथ जोड़कर उसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो ऋषियों को प्रसन्नता नहीं हुई। लोग सोच रहे थे कि राजा देव की जान मथने पर बहुत गुणवान राजा पैदा होगा, लेकिन हो गया एक छिपना काला, जबकि उनको प्रसन्नता नहीं हुई। तो उन लोगों ने कह दिया तुम बैठो निश्चित। उसने प्रार्थना किया सेवा के लिए, तो ऋषि ने कह दिया तुम बैठो निश्चित। तो उसका नाम निषाद पड़ा। वही निषाद राजा देव के द्वारा किए गए समस्त पापों को लिए पैदा हुआ। तो इसके बाद ऋषियों ने मिल करके राजा देव के बाहों को मथा। एक बाह से अर्चित नाम की लक्ष्मी की अंश भूता स्त्री उत्पन्न हुई, दूसरे बाह से साक्षात भगवान के अंश श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। बहुत प्रसन्नता हुई ऋषियों को। ब्रह्मा जी आए और तुरंत उन्होंने लक्षण देख करके बताया कि ये भगवान विष्णु के अंश हैं, उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैर में वज्र अंकुश ध्वज आदि का चिन्ह था। कई लक्षणों से ब्रह्मा जी ने बता दिया कि ये साक्षात भगवान है, विश्व की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, ये आदि राज है, प्रथम राज है जो विश्व का, विश्व के समस्त प्राणियों का पोषण करेंगे, पालन करेंगे। उसके बाद ऋषियों ने प्रणय किया सूत और मालव के लोग प्रथम महाराज की स्तुति करना प्रारंभ किया, लेकिन प्रथम महाराज दिव्य निरोग दिए या तो हमारी स्तुति बात की, अभी मेरे गुण कुछ प्रकट नहीं है। भगवान की कीर्ति रहते हुए किसी की कीर्ति नहीं जानी चाहिए, वाणी का अपव्यय है। फिर भी ऋषियों की कला से सुतर मागर भविष्य में क्या क्या करेंगे उसको कह करके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये साक्षात भगवान के अंश हैं, ये पृथ्वी का ग्रहण करेंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, कई प्रकार से स्तुति हुई। ऋषियों ने मिल करके महाराज पितृ को राज्याभिषेक कर दिया, राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब राजा के पद पर भगवान हुए पितृ महाराज और समस्त जीव के प्रतिनिधि उनके पास आ करके अपनी दिन बसर बताने लगे, हे प्रभु हम अन्न के बिना मर रहे हैं, जैसे किसी वृक्ष के खोहन में अग्नि हो तो अग्नि इस वृक्ष को जला देती है, इसी प्रकार से हमारे पेट में भूख है, अन्न नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है, लगता है कि हम सब मर जाएंगे। आपको व्यवस्था सबके आहार की व्यवस्था की थी, तो महाराज पृथ्वी ने विचार किया क्या बात है, किस कारण से लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। विचार करके भगवान ने निश्चय किया कि पृथ्वी पैदा नहीं कर रही है, पृथ्वी पर अन्न सब्जी धूल आदि की कमी है, ये नहीं कह रहे पैदा नहीं कर रहे हैं। तब हाथ में धनुष लिया, उस पर बाण का संधान किया पृथ्वी पर मारने के लिए, तो माता पृथ्वी भैंस है गौ रूप धारण करके धान गौ के रूप में इसलिए हुई माता पृथ्वी की पृथ्वी महाराज वध नहीं कर रहे, तो बहुत कांप रही थी थर थर बहुत भागी इधर उधर पृथ्वी महाराज शक्ति छी। और अंत में जब रुक गई तो उन्होंने कहा तुम इतना जबस गबस खाती हो और दूध नहीं दे रही हो, इतने जीव हैं प्राणी हैं ये सब मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं पैदा कर रहे। पृथ्वी ने कहा कांप रही थी भय से, आप लोगों ने देखा होगा कोई गाय भय से किस तरह कांपती है, वो कांप रही थी। तो कुछ महाराज बैठ कर कहा बहुत क्रोध में थी, आंखें लाल हो गई थी, धनुष बाण लिए थे, कहने लगा कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुम इतने जीवों को भोजन नहीं दे रही हो, तुम सबकी माँ होकर के भी दूध नहीं दे रही हो, अन्न सब्जी फल फूल फल नहीं कर रही हो, तो मैं तुम्हारा वध करूँगा और तुम्हारे मेघ द्वारा मैं सबका पालन करूँगा, तुमको ये अभिमान है कि मैं सबको धारण करती हूँ, सभी पृथ्वी पर ही टिकते हैं, तो मैं तुमको काट करके बाणों से तिल तिल कर दूंगा छुटा, और अपने जल शक्ति से मैं संपूर्ण प्राणियों को धारण करूंगा आकाश में। क्रोध में बोल रहे थे खूब मैं तुमको मार दूंगा और अपनी योग शक्ति से सबको धारण करूंगा, तुम्हें अभिमान मत करो कि पृथ्वी मैं हूं और मैं ही सबको धारण कर रहे हैं, मैं अपनी शक्ति से धारण करूंगा, भगवान कर सकते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं आकाश में, प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत अनंत लोक हैं, वो भरे हुए हैं जीवन से, भगवान सबको धारण कर ही रहे हैं, ये कर सकते थे, लेकिन भगवान क्रोध में बोल रहे थे। पृथ्वी रोती थी, उसने अपने मन को धैर्य दिया और कांप रहे थे, वो खड़ी हो गई और महाराज पृथ्वी से निवेदन करने लगी। सबसे पहले माता पृथ्वी ने भगवान के पृथ्वी की स्तुति की है, प्रार्थना की, प्रार्थना के साथ वो ये कहते हैं कि फिर ऐसा आप स्नेह करते थे हमसे, जब मैं गर्भ समुद्र में गिर गई थी तो आप 12 अंगुल धारण करके अपने दांतों पर मेरा उद्धार किए, आप इतना स्नेह करते थे, आज वही इतना काल जैसा कठोर हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले माता पिता ने कहा आप क्रोध को छोड़िए, मन में आप अपने क्रोध को शांत कीजिए
मैं कुछ निवेदन कर रही हूँ, इसको सुनिए। मैं कुछ सुना रही हूँ स्लाइड पर, इसको आप सुनिए। सर्वता सार मान करते यथा मधु करो बुधा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात सुना रही हूँ, यद्यपि मेरी सभी बातों में सार नहीं है, कुछ असार भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति सर्वत्र सभी विषयों से सार को निकाल लेता है। जैसे भ्रमर अनेक जगह उड़ता है, अनेक फूलों पर बैठता है, पर उसके सार को, उसके मधु को निकाल लेता है। कई फूलों में कांटे होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, कई प्रकार के रस होते हैं, लेकिन उनके सार को, मधु को निकाल लेता है। अच्छा, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, इसमें जो सार है उसको आप निकाल दें। अगर क्रोध से कमाए तो क्रोध से उनके क्रोध दूर है, दूसरा प्रस्फुटा होगा, क्रोध से काम करे तो वो, लेकिन फिर भी सुने, मतलब फिर भी सुनाने लगे। सबसे पहले उसने कहा कि विद्वान व्यक्ति मधुकर के समान, घोड़ा के समान सार को ले लेता है। हमारे वक्तव्य में जो भी सार आपको लगे उसको ग्रहण किया। तो किशोर महाराज बड़े ध्यान से सुनने लगे। यहाँ बड़ी शिक्षा है कि साक्षात भगवान के अवतार किशोर महाराज, लेकिन क्रोधाविष्ट है, क्रोध से भरे हुए। उस समय किसी को मार देना चाहते थे, पर ऐसे क्रोधाविष्ट भगवान से किसी विनय कर रही है कि आप पहले क्रोध को छोड़िए, शांत हो जाइए और शांत हो करके मेरी बात सुनी है। मेरी बातों में जो सार है उसको ग्रहण कीजिए। तो पृथ्वी ने क्या कहा है, पृथ्वी भाव सुन रहे थे और धरती माता कहती है प्राणियों के इस लोक में और परलोक में, इस जीवन में और दूसरे जीवन में जैसे श्रेय हो सके, जैसे मंगल हो सके, इसके लिए मुनियों ने कुछ उपाय निश्चित किया है। इस जीवन में कैसे अच्छा से खाएंगे पिएंगे और फिर दूसरे शरीर में उच्च लोगों में जाएंगे, इसके लिए ऋषियों ने कुछ उपाय निश्चित किए हैं और वे सब उपाय वेद शास्त्र में दिए गए हैं। तो उन उपायों के अनुसार अर्वाचीन व्यक्ति भी, इस समय का व्यक्ति भी यदि अपनाता है आदर के साथ, उपायों को करता है, उसका कल्याण होता है। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति अपने मन से यदि कुछ करता है तो इस लोक में सुख नहीं होता है, परलोक में भी नहीं। और मुनियों के द्वारा निश्चित किए गए उपायों को छोड़ करके यदि कोई कुछ करता है तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, उसे फल नहीं मिलता है। इस लोक में ईश्वर ने उपाय बताया है, जैसे कृषि आदि यदि अन्न प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना हो तो उसके लिए कृषि आदि करना होता है। और परलोक में अच्छा लोक मिलने के लिए, अच्छा जीवन मिलने के लिए अग्निहोत्र आदि करना होता है। मतलब पिछले साल जो व्यक्ति अपने मन से कोई काम प्रारंभ करता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, बहुत दुखी होता है। तो पहले के मुनियों ने जो उपाय बताया है वो उपाय आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आप वक्त बनाएंगे, जो जिस ग्रुप के हेड हैं उनको बछड़ा बना करके और फिर दोहन पात्र, मैं दूध दोने मुझको दुहने वाला कोई चाहिए, दुधार और वक्त पहले वक्त चाहिए, उसके बाद दोहन पात्र, उसके बाद दुहने वाला। तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार सभी प्राणियों को भोजन दे दूंगी, उनका जैसे मंगल होगा तो मैं कर दूंगी। क्यों नहीं, मैं अन्न उत्पन्न कर रही हूँ, इसके विषय में भी सुन लीजिए। मैंने देखा कि अब इस लोक में मेरा अनादर हो रहा है, मेरा पालन नहीं हो रहा है, आप जैसे लोग पाल ही नहीं सकते हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत भी लोग पाल रहे हैं, आप जैसे डायरेक्ट माता पृथ्वी बेल का नाम नहीं दे रही है, प्रथम महाराज को कह रहे हैं कि आप जैसे राजा बेल के प्रति संकेत है, ऐसे दुष्चरित्र राजा हो गए, दुष्ट जिन्होंने मेरा अनादर किया, मेरा पालन नहीं किया। मेरा पालन होता है यज्ञ के द्वारा। यदि इस पृथ्वी पर यज्ञ होता रहे तो अन्न की कमी नहीं होगी। यही सिद्धांत है यज्ञ बहुत ही पर्जन्य। भगवान गीता में कहते हैं कि यज्ञ से आकाश में बादल छाते हैं, पर्जन्या धर्म संभव, और बादल से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। किसी प्राणी का भोजन अन्न कहा जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए ग्रेन है, अन्न है, ऐसे ही पशुओं के लिए घास। घास वृक्ष के पत्ते आदि ये सब अन्न है। तो जल से मेघ होता है, मेघ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से ही सभी प्राणी जीवित होते हैं। यज्ञात भवत पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात भवत भूतादि। अन्न से ही सभी प्राणी जीवित होते हैं। तो हमने देखा कि राजा ऐसा अयोग्य हो गया है कि उसके चलते सारी प्रजा चोर हो गई, चोरी हुई है। माता पृथ्वी कह रही है, जब मैंने देखा कि सभी चोर हो गए तो मैंने यज्ञ के लिए अन्न को अपने भीतर छिपा लिया। भगवान ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए हुए पदार्थों को बिना भगवान को अर्पण किए खाता है वो स्त्रीनशा चोर है। आज के दिन में सारा जगत चोर है, नास्तिकता छा गई है। ईश्वर को ना मान करके ईश्वर के द्वारा दिए हुए पदार्थों को मनमाना भोगना, इंद्रिय तृप्ति करना, यही मनुष्य का काम हो गया है। तो इसलिए सबको चोर बना दीजिए माता पिता। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत असभ्य लोग नंद होती भगवान के अभाव से सभी पदार्थों को खा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। उससे जिस जिन वस्तुओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का अर्पण करना चाहिए, वे सब वस्तुएं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आगे जब हो नहीं पाएगा इन सब वस्तुओं को समाप्त करके दुष्ट लोग, तो मैंने यज्ञ के लिए भगवान की आराधना के लिए उन वस्तुओं को छिपा दी। और बहुत काल हो गया, बहुत समय बीत गया, इसलिए वह सब वस्तुएं मेरे भीतर पच गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आवश्यक सारी वस्तुएं अन्न फल फूल हुए और कपड़े आदि जो भी आप चाहते हैं मिल है, तो आप उसके लिए बछड़ा बनाइए, पात्र बनाइए और दूल्हे और निश्चित कीजिए। तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार दूर दूंगी, सभी प्राणियों की सभी आवश्यकताओं पूर्ति कर दूंगी। इसके बाद प्रथम भारिता प्रथम महाराज के वर्ष में स्नेह में पड़ी पृथ्वी खड़ी थी और गौ के रूप में। तो सबसे पहले प्रथम महाराज ने मनु महाराज को, जो मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वयं हुआ मनु को वर्षा बनाया और स्वयं दूध है गाय को, एक हाथ से दूध रहे थे और एक हाथ में दूध को इकट्ठा कर रहे थे। सकलाव से सब प्रकार के अन्न है, आप ध्यान में ले सकते हैं, जैसे कि जौ गेहूँ मटर सरसों जितना भी औषधियाँ हैं, इतने अनाज हैं, सब प्रकार की सब्जी फल फूल, इनको हाथ में दूरा तुम्हारी मनु महाराज मनु महाराज फिर दो महाराज जी और मनु महाराज वर्षा बनाए, हाथ में पारो एक और लिखा गया है। उसे अनुवाद अलग लगा कि दोनों हाथ में दूर रहा है, लेकिन पारो भी एक बोतल में है पानी में, एक हाथ से दूर है और एक हाथ में इकट्ठा किया। संसार में जो भी अन्न है फैला हुआ या होगा सब प्रथम महाराज ने ग्रहण किया, मनु महाराज को बछड़ा बनाकर। मानव जाति के वंशधर हैं, स्वयं प्रथम महाराज के पूर्ववर्ती हैं। गुरु महाराज मनु महाराज के वंश में नहीं है। मनु के दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तान पाठ, तो उत्तान पाठ की परंपरा में श्री ध्रुव महाराज आते हैं। तो इस तरह मनु महाराज ने सारी औषधियों का ग्रहण किया, सब प्रकार के अन्न फल फूल मनु महाराज ने दूरा, ऋतु महाराज ने दूरा, मनु महाराज बरकर। और इसके बाद मैं दिखाते हैं विषय और पुत्र होते हैं। इसके बाद ऋषियों ने ग्रहण किया, ऋषियों ने ग्रहण किया क्या पात्र बना, तो पात्र था मन वाणी और कान। कहते हैं कि केवल अन्न प्राप्ति से ही कल्याण नहीं होना माना जाती है, मानव के हित के लिए वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है कहाँ, वो रखने का पात्र है सबसे पहले मन, इसके बाद वाणी और स्रोत कान। इसी से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं। वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान का सार क्या है, महामंत्र हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
वैदिक ज्ञान का जुड़ा ऋषियों में, दोनों पात्र थे कान जीव और मन। मन में स्मरण करना वैदिक ग्रंथों का, वाणी से पाठ करना, कान से सुनना, यही उपाय है। इस तरह से धारण किया जाता है, बारम्बार यदि सुनेंगे महामंत्र को और वाणी से बोलेंगे, मन में स्मरण करेंगे, तब मन पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी और मन पवित्र, काम पवित्र होगा और हमारा जीवन सफल होगा। तो ये ऋषियों ने देवी पृथ्वी देवी को दुहा, इंद्रियसु अर्थात सप्तमा, ये सभी ऋषि सप्तमा सुखाचारी थे, साधु स्वभाव के थे, वैदिक ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को यहाँ पय कहा गया है, दूध पय छंदोमय छंदमय वेदात्मक दूध दुरा। सिद्ध जी को समीपाद जी यहाँ टीका किए हैं, कहते हैं कि गाय के रूप में दूधनी खड़ी है और दोहन हो रहा है, तो सामान्य जनता के वही अनुभव केवल दूध दुहा जा रहा है, लेकिन एक वेदात्मक दूध दुहा ऋषियों ने। ऋषि हमेशा से इसी पक्का में रहते हैं कि जीवों का कल्याण होना चाहिए, कल्याण के लिए वैदिक ग्रंथ बहुत आवश्यक है, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद इत्यादि। इसको पढ़ने से, सुनने से, मन में स्मरण करने से हमारा परम मंगल होगा। इसीलिए ऋषियों ने वेदात्मक दूध दुहा। इसमें सप्तमा एक वचन में है, अभी यदि कहे तो विदुर जी के लिए संबोधन है मैत्रेय जी का, हे सप्तमा हे संत शिरोमणि। और बहुवचन में है कि ऋषियों का विशेषण है सप्तमा। सज्जन शिरोमणि ऋषि जन जिसमें विदुर जी प्रधान है, उन लोगों ने वेदात्मक दूध दुहा। पृथ्वी एक करोड़ करोड़ क्विंटल अन्न भरा हुआ है, हर एक साल उत्पन्न होता है, सारी दुनिया में अन्न होता है, कपास होता है कपड़ा बनाने के लिए, और शुगर के ईख उत्पन्न होता है, गुड़ उत्पन्न होता है, चीनी उत्पन्न होती है, जो भी है पृथ्वी में चल रहा है। इस तरह से पृथ्वी महाराज ने व्यवस्था किया, पृथ्वी पृथ्वी महाराज के स्नेह के पास में खड़ी थी, कभी कोई लाभ नहीं मार रही थी, बहुत सुखी शादी पृथ्वी गौ के रूप में और अलग अलग बछड़े बंद करके दूध दुहा जा रहा है। पृथ्वी ने कहा कि कोई वक्त हमको पहना देगा तो मैं उससे वत्सला होकर के दूध दूंगा। इसमें प्रश्न आया है कि दैत्यों और दानों में श्रीमणि श्री प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना करके दैत्यों ने आसव और मद दूंगा पृथ्वी से कतग्रहण किया है। वृक्षों से जो आसो निकलता है जैसे ताली खजूर से ताल वृक्ष से आसो अशुभ यही भी बताते हैं। अन्य प्रकार जितने भी शराब हैं ये सब असुरों के द्वारा उत्पन्न किए हैं। एक प्रश्न उठाया अर्जुन प्रसंग की, अभी तो प्रहलाद महाराज हुए नहीं थे तो उनको बच्चा कैसे बना दिया गया। तो महाराज मनु का समय चल रहा है, स्नान हुआ मनु का, तो अभी प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे तो उनका नाम करके आया है। स्वयं उत्तर देते हैं प्रहलाद सबसे महान पुरुष हैं असुरों में, तो माता पृथ्वी स्वयं ही कही पृथ्वी महाराज से प्रहलाद महाराज मेरी वर्षा बनेंगे तो मैं उसके अनुसार दूध दूंगी। तो भाव मैं प्रहलाद खड़ा किया, पहले से ही कल्पना करती थी यदि मुझ पर प्रहलाद महाराज का जन्म होगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो भाव मैं भावना से प्रहलाद को बछड़ा स्वीकार किया, प्रहलाद महाराज ये सब ताली शराब आदि नहा दिए तो पिए नहीं, लेकिन ऐसा अशुभ लोग पीते हैं। इस प्रकार से 15 ग्रुप का यहाँ वर्णन है, 15 लोगों ने दोहन किया, 15 प्रकार के लोगों ने। बड़ा सुंदर प्रसंग है किस किस युग में क्या क्या दोहन किया, क्या पात्र था। जैसे पितरों ने अर्जुमा जी को हेत बना करके वर्षा बना करके और सब दोहन किया। जैसे देवताओं का भोजन हव्य होता है, अभी वैसे ही कव्य भोजन होता है पितरों का। कच्चे मिट्टी के बर्तन में हक का भी दोहन किया। ब्रह्मों ने और सबने ग्रहण किया, उनको तो याद नहीं है उसने क्या ग्रहण किया, लेकिन इसको पढ़ करके समझना चाहिए अच्छे से। श्री प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर समझाया है। सभी भक्तों का कर्तव्य है कि बारम्बार इसको पढ़े। कैसे पृथ्वी महाराज पृथ्वी को वश में किए थे, जैसे कोई बाला किसी गाय को पकड़ करके रखे सहला करके और उसके वश में होकर के दूध दे, उस तरह से पृथ्वी दूध दे रही है। सब प्रकार के दूध देव भी दे रही है, धर्मों को राग कंठ स्वर और सुंदरता अभी सब दे रहे दूध के रूप में। समग्र मानव जाति को समस्त प्राणियों को विभिन्न प्रकार के भोजन माता पृथ्वी दे रहे। कृष्ण महाराज का प्रयास था उनके उद्यम से पृथ्वी सबको भोजन दे रहे हैं। आज तक बड़ा सुंदर बात है कि पूर्व के आचार्यों ने जो किया है उन उपायों को करने पर अर्वाचीन आज का आदमी भी सफलता पा लेगा। श्री प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे पूर्व के लोगों ने आचार्यों ने विधि में निश्चित किया है अनुपण करने का, तो वे तो कृषि करते थे बैलों से और गाय से, स्वाभाविक भोजन की समस्या हल हो जाती थी। पर्याप्त घी पर्याप्त दूध दही में सब होते थे और वही उपाय करने पर आज भी हो सकते हैं, लेकिन आज तो लोग खेती कर रहे हैं ट्रैक्टर के द्वारा, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहती है। ट्रैक्टर से खेती करते हैं और मान लीजिए डिजर्ट हो मरुभूमि हो, उसमें ट्रैक्टर चला कर क्या करेंगे जब वर्षा ही नहीं है। इसलिए पृथ्वी ने कहा कि सबसे पहले उपाय के लिए वर्षा का, वर्षा होनी चाहिए और वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मुझ पर पानी रहे इसकी व्यवस्था की जाए। समान चक्र मानदंड उसको समतल कीजिए, बहुत उभर खबर जमीन है कहीं ऊँचा है कहीं खाल है पानी ठहरता नहीं, इसलिए उसको आप शांत कीजिए और इसके बाद पानी रुक सकता है। पानी रुकने लगे तो भी प्रसर देगा तो अपने आप अपार पैदा होता है, अपार फंसने ऊपर पेड़ पौधे घास सारे जगत में भर जाएगा अगर पानी सब जगह वर्षा ऋतु बीतने के बाद कुछ सूख जाती है, लेकिन पानी अगर रहे तो आसान तरीके से बहुत अमल पर होंगे, अभाव नहीं रहेगा। द्वादश स्कंध में लिखा गया है, सुपे जी कहते हैं कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर एक दाना नहीं होगा, कहीं कोई फल नहीं फूल नहीं भोजन सामग्री बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि वह भूख के कारण पिता अपने बच्चे को खा जाएगा, अपने पुत्र को खा जाएगा, मांस खा जाएगा और पुत्र पिता को खा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए क्योंकि लोग यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान का कहीं नाम नहीं सुना जाएगा, स्वाहा स्वधाय सब सबसे बड़ा यज्ञ है इस युग में भगवान के नाम का संकीर्तन। जो भी बुद्धिमान लोग हैं वे इसी संकीर्तन को नाम संकीर्तन को पसंद करते हैं। यही उपाय है यदि सब जगह भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथाएँ रहें, तो फिर उमेर में छाए रहेंगे आकाश में, वर्षा पर्याप्त होगी, वर्षा होगी तो पर्याप्त अन्न होंगे, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। इसलिए समस्त अभावों की पूर्ति महामंत्र से होगी, यही करना चाहिए स्कूल में। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
पृथ्वी का ये यज्ञ होगा तब पर्याप्त अन्न देने की शक्ति उनमें रहेगी, और बड़ा भारी भारी उपाय करने से अन्न होगा नहीं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह कैटर की व्यवस्था है सब है, लेकिन बहुत अभाव है अन्न का, उचित भोजन का, दूध दही आने का तो अभाव है ही, ग्रेन का भी अभाव है बहुत। यहाँ तक कि अगर ग्रेन कुछ हो भी जाए तो उसको पकाने के लिए गैस इतना महंगा हो रहा है, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि पशु रखेंगे उनका पालन पोषण ठीक से होगा तो गैस समस्या नहीं रहेगी। हम लोग गांव में रहते हुए देखे हैं कि गांव में केवल गाय के अंडे से गोबर से सूख करके जब कड़ा लेकर उसी से भोजन बनता है, गैस शायद से कोई जरूरत नहीं है। ये सब समस्या पैदा किया है गैस का। ऋषियों ने जो उपाय बताया वो उपाय छोड़ करके हम लोग अपने मन से मशीन उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। माता पृथ्वी ने स्वयं भगवान से पृथ्वी महाराज से बातें कही कि जो पूर्व प्रदर्शित आचार्यों द्वारा उपायों को छोड़ करके नए ढंग से उपाय करता है उसको उसके आप देवीचरण भी उसके प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं, वो सफल नहीं होता है। महाराज के द्वारा पृथ्वी का दोहन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको पढ़ना चाहिए बार बार। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।